ये मेरी बहनों तथा भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज 23 मई 2020 का दिन है। आप सब के लिए ये प्रेरणादायक और भक्ति से भरपूर हो इन शब्दों के साथ आज मैं आपको आज प्रातः जो मुझे अनुभूति हुई है प्रथम उसी को सुनाऊंगी। जैसा कि मेरा दैनिक जीवन है, मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ और प्रातः 4 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। आज भी नींद खुल गई, लेकिन मैंने पुनः आंखें बंद करके राम राम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते मुझे नींद आ गई, झपकी लग गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे माथे पर बड़ा सुंदर राम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी खड़े हैं, बड़े सुंदर उन्होंने कपड़े पहने हैं, जैसे कि चित्रों में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और उन्होंने मुझे कहा, माँ आपके माथे पर राम लिख दिया। और मैं देख रही हूँ कि मेरा माथा मेरे सामने है और मेरे माथे पर सचमुच ही बड़ा सुंदर राम लिखा है, जैसा कि इस ऐप पे लिखा होता है, जिस पर मैं प्रतिदिन राम राम लिखती हूँ। नींद झपकी या नींद कुछ भी कह लो खुल गई, तो मैं सोचने लगी कि ये क्या है, हनुमान जी ने आज मेरे माथे पर राम लिख दिया, कितनी कृपा हुई आज मेरे पर, बहुत प्रसन्न हुई मैं। और काफी देर तक मैं इसी अनुभूति में, इसी खुशी में, इसी प्रसन्नता में डूबी रही। और कुछ दिन पहले एक और ऐसी अनुभूति हुई। दिन का समय था, मैं अपने बिस्तर पर बैठकर राम नाम लिख रही थी। बिमला ने बोला, आप ऐसे बैठने से झुका के ऐसे नहीं बैठो, आप पीछे ढासना लगाओ। मैं ढासना लगा के बैठ गई, पीछे तकिया लगा के, और राम नाम लिखने लगी। लिखते लिखते मेरी आंखें बंद हो गई और मेरा हाथ रुक गया, मुझे झपकी सी आ गई और मुझे एकदम से प्रतीत हुआ कि झट से छोटे हनुमान आकर के मेरी दाईं साइड में बैठ गए। और मैंने कहा, अच्छा हनुमान जी आ गए, और मेरी आंखें खुल गई। ये दो अनुभूतियां भी इसी एक महीने में मुझे हुई। आज का विषय है मेरा, बाबा आगे आगे माया पीछे पीछे। फरवरी 1975 में श्री रामलाल जी, जो मेरे बड़े भाई थे, बाबा जी के पास आए और कहने लगे, बाबा जी बहन जी को घर भेजो और उनको अभी नौकरी करनी है। तो बाबा जी ने कहा, क्यों क्या करना नौकरी करके? तो रामलाल जी ने कहा, 20 साल नौकरी करेगी तो पेंशन मिल जाएगी। फिर बाबा जी कहते हैं, पेंशन से क्या होगा? रामलाल जी ने कहा, अपने प्रतिदिन के खर्च के लिए इनके पास पैसा होगा तो ना ही इनको चिंता होगी ना ही हमको। तो बाबा जी हंस पड़े, मैं भी दिन बैठी थी, कहने लगे, अरे रामलाल आप कहते क्या हो, मेरी माँ आगे आगे माया पीछे पीछे चली। ये तो 1975 की बात है। अब मैं आपको एक चित्रकूट की यात्रा के विषय में बताती हूँ, जिसमें बाबा जी के यही शब्द पुनः दोहराए गए हैं, बाबा आगे आगे और माया पीछे पीछे। बाबा जी को अपने भक्तों को साथ लेकर के धार्मिक स्थलों पर, भगवान के ऐतिहासिक स्थलों पर जाने में बड़ी रुचि थी। वो प्रायः हर साल हम भक्तों को साथ लेकर कहीं अवश्य जाते थे। फरवरी 1973 में उन्होंने चित्रकूट की यात्रा का निश्चय किया और उन दिनों 18 हजार में रघुवीर सूद एक ड्राइवर थे, जो कानपुर के लाला की जीप चलाते थे, इसलिए रघुवीर जी को बुलाया और कहा कि जीप लेके चलो, हमें चित्रकूट जाना है। तो रघुवीर जी अपने लाला जी जो कानपुर थे, जो फ्रूट के व्यापारी थे, उनको लेकर आए बाबा जी के पास। तो उन्होंने कहा, बाबा जी हाँ जीत तो दे दूंगा, परंतु पेट्रोल आप डालेंगे। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, पेट्रोल भी डालेंगे। और महाराज जी जीप बड़ी पुरानी है, घिसी पिटी है, आप इसकी मरम्मत भी करवा देना। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मरम्मत भी करा देंगे। और इसी तरह ये प्रोग्राम निश्चित हो गया। मैं और मेरे माता जी भी इस यात्रा के लिए तैयार हो गए। नारायण जी, उनकी धर्मपत्नी और उनका एक छोटा बालक भी इस यात्रा में चले, और इसके साथ हमारे साथ एक दो और भक्त भी चल पड़े। जीप बहुत पुरानी थी, सब भक्तों ने कहा ये गलत है, आप इतनी पुरानी जीप को लेके जा रहे हैं, बाबा जी कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो ये तो 25-30 किलोमीटर ही चलेगी, ज्यादा नहीं। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो लाला जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा कानपुर के साथ। तो बाबा जी ने कहा चलो आप भी चलो। फिर बाबा जी को उन्होंने कहा कि ये जीप बहुत पुरानी है और इसके पास हमारे पास दूसरा पहिया भी नहीं है, इसलिए चंडीगढ़ जाके हमें एक स्टेपनी भी ले दो। चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ पहुंच करके बाबा जी ने भक्तों को कहा कि दो खर्च दो और उनके लिए वो जीप ले के लिए पहिया ले दो। पहिया आ गया। दूसरे दिन हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच कर के लाला जी ने कहा गाड़ी बहुत पुरानी है, इसको वर्कशॉप में डाल दो। बाबा जी ने कहा ठीक है, वर्कशॉप में डाल दो। तो हम सब भक्त हैं, माता जी नारायण जी उनकी धर्मपत्नी और जो भी दो तीन थे, बड़े चिंतित हुए या क्या होगा। अब जितना पैसा है सब खत्म हो जाएगा, पैसा कहाँ से लेंगे। बाबा जी तो अपने पास रखते नहीं थे, मैं सर्विस में थी, मेरे माता जी ने नारायण जी जो कुछ जो हम जा रहे थे सब थोड़े थोड़े पैसे डाले हुए थे। तो बहुत चिंता थी। जीप को वर्कशॉप में डाल दिया गया और खुद बैठे थे हम सब्जी मंडी में, क्यों ठहरे थे, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन क्या करे, बाबा जी साथ है, मुश्किल भी आसान लग हो जाती थी। तीसरे दिन जीप आ गई और वर्कशॉप से जब वापस आई जीप तो पता चला कि वर्कशॉप में इसका कोई काम नहीं हुआ, उन्होंने वैसी की वैसी वापस भेज दी है। और हम सब बड़े खुश हुए कि वहाँ कोई पैसा नहीं लगा। फिर हम दूसरे दिन दिल्ली से कानपुर चल पड़े। दिल्ली से कानपुर जाते हुए गंगा जी का मैदान आता है। गंगा जी के मैदान पर जो नेशनल हाईवे जीते और बनी है, उसके दोनों ओर गेहूं के बड़े बड़े खेत थे और जिसमें गेहूं लगा रही थी। हम जा रहे थे, दोपहर हो गई। दोपहर के समय हमने क्या देखा कि सड़क के एक ओर से बहुत से नोट उड़े और जीप के ऊपर से होकर सड़क के दूसरी ओर आ गए। वो नोट काले जैसे होते हैं, जैसे जो जो रंग होता है नोटों का, वो रंग के नोट थे, कोई 20 का, कोई 100 का, कोई 5 का। तो सभी भक्त कह उठे, बाबा जी जीप रोको, देखो देखो रुपये उड़ गए हैं। तो बाबा जी हंस पड़े। उन्होंने ड्राइवर को कहा नहीं चलो, और कहा बाबा आगे आगे माया पीछे पीछे, मत डरो चलो आगे चलो। जीप चली गई। हम बहुत खुश थे कि देखो बाबा जी ने हमें कितना अच्छा प्रसंग दिखाया, इतना अच्छा दृष्टांत दिया कि डरो नहीं, पैसे आ जाएंगे और आपको डरने की बात नहीं है। फिर हम दूसरे दिन कानपुर चले गए। कानपुर से तीसरे दिन हम इलाहाबाद रवाना हुए। इलाहाबाद में 3 दिन खूब आनंद किया। एक दिन आश्रम मेरे त्रिवेणी जाकर समुद्र में स्नान किया, द्वादशी का आश्रम देखा, बूढ़े हनुमान जी के दर्शन किए, किला तथा संग्रहालय भी देखा। तीसरे दिन हमारी गाड़ी चित्रकूट की ओर चली। चित्रकूट के रास्ते में भरतकूप में ठहरे। भरतकूप में स्नान करके उसकी महिमा का महत्व समझा। आंखों के आगे तुलसीदास जी द्वारा वर्णन साकार हो उठा। तुलसीदास जी लिखते हैं, देव देव अभिषेक हेतु गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सललू ते कहल जाए। भरत कहने लगे हैं, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरुओं की आज्ञा पाकर सब तीर्थों का जल ले आया हूँ। मतलब के हो तब भरत सन शहर समीप सुकूप, राखिये तीर्थ पोत है पावन अमित अनूप। भरत कूप अब कहीं भी लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम स्नेम निमंजन प्राणी, हुई विमल कर्ण मन बानी। अतः भरत राम का प्रेम, उनका मिलना व भरत कूप की महिमा साकार हो उठी। वह भरत कूप से हम चित्रकूट जा पहुँचे। चित्रकूट सुहावना एकांत स्थान है, मंदाकिनी नदी बह रही है। अनसुया देवी ने अपने तप से इसे प्रकट किया है। अनसुया का पवित्र स्थल आज भी दर्शनीय है। स्फटिक शिला जहाँ श्री राम ने माँ जानकी सहित विश्राम किया था, जयंत ने काक का रूप धर चोंच मार कर तुष्या ली थी। क्या दशरथ का पुत्र राम परब्रह्म ही है? उसके दर्शन करते हुए गुप्त गोदावरी पहुँचे। यहाँ गुफाएं हैं जहाँ सीता कुंड तथा राम लक्ष्मण कुंड बने हैं। इन्हीं गुफाओं में भगवान राम के रहने का स्थान भी था। निवास स्थान के साथ ही एक गुफा में निर्मल स्वच्छ जल एक ओर से निकल कर दूसरी ओर लुप्त हो जाता है। भीतरी गुफा में राम कुंड में श्री महाराज जी ने चरण धोकर कहा, चरणामृत ले लो। उसमें स्वामी जी भावा वेश में थे, मानो त्रेता युग की याद में रामावतार में ही प्रविष्ट हो चुके हूँ। मैंने स्वयं चरणामृत लिया और सब भक्तों को चरणामृत दिया। सब ने ये अमृत पीकर के भक्ति भाव से श्री महाराज जी को प्रणाम किया। दूसरे दिन हम कामनाथ पर्वत जहाँ श्री राम ने सीता तथा भ्राता लक्ष्मण सहित निवास किया था, उसकी परिक्रमा नंगे पांव की परिक्रमा करते हुए श्री महाराज जी सबसे आगे एक मधुर मस्ती में चल रहे थे। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि अभी त्रेता युग की स्मृति साकार हो गई है। तत्पश्चात तीसरे दिन हनुमान धारा की चढ़ाई चढ़कर राम धारा हनुमान के उस रूप के दर्शन किए जिसमें लंका जलाकर वे इस धारा का जल पीकर शांत हुए थे। मंदाकिनी नदी के तट पर 500 वर्ष पुराना वट वृक्ष अब भी शोभायमान है। चित्रकूट के घाट पर भी संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। धन्य है ये भूमि और धन्य हुए भक्त तुलसीदास। इन्हीं शब्दों के साथ में चित्रकूट की यात्रा का वर्णन पूरा करती हूँ। लेकिन अभी आप ये ना समझें कि यात्रा पूर्ण हो गई। कल भी मैं इसके अगले भाग के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। जय प्रभु गीता।